धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम श्रुतात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वच्छायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। लोया लोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिणं वीरं नम्यूणखेत्तसुत्तं जहोवये संपयासेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, अभी अपना विषय है क्षेत्रानुगम का, क्षेत्र संबंधी। चौथी पुस्तक के 37 नंबर के पृष्ठ पर हम आ गए, 37 नंबर। यहाँ बात क्या चल रही थी, यहाँ तो गुणस्थानों में यानी गुणस्थान वाले जीवों का क्षेत्र निकालना है। क्षेत्र कहने से वो कितने एरिया में, कितने क्षेत्र में रहते हैं, उसको अलग अलग पद्धति से बताया जाता है। सामान्य लोक यानी पूरा लोक में, या पूरे लोक में रहते हैं, या ऊर्ध्व लोक, या अधो लोक, या तिर्यक लोक, या मनुष्य लोक, इस तरह इतने विभाजन करेंगे। तो लोक के असंख्यात अभाग है कि मनुष्य लोक का संख्यात अभाग है कि असंख्यात गुणा है, वो बात यहाँ बताएंगे। तो जब क्षेत्र हम कैलकुलेट करते हैं तो जीवों की जो अवगाहना है उसका साइज है वो तो लेना ही लेना, नंबर ऑफ जीव भी लेना, और उनमें वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ विहार करते हैं, मारणांति समुद्घात करते हैं, कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, वो सब कंसिडर करके उनका क्षेत्र कितना हो सकता है उसकी बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ अभी अपनी बात हो रही थी कि जो विहार पहले ये बात देखी थी हमने, सभी जीवों की अपेक्षा बात करनी है तो यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते, तो सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म अन्य केंद्रीय पूरे लोकाकाश में है। तो मिथ्या दृष्टि कहाँ रहते हैं, उनका रहने का ठिकाना तो कहेंगे पूरा लोक। फिर उन्हीं का वेदना समुद्घात होगा, कषाय समुद्घात होता तो भी पूरा लोक, वे ही मारणांति समुद्घात करेंगे तो पूरा लोक, और उन्हीं का उपपाद यानी जो जन्म का पहला समय वो भी पूरा लोक। इस तरह से इनके लिए तो पूरा लोक सिद्ध होता है। हम अभी विहारवत की बात कर रहे थे, विहारवत स्वस्थान में क्या लेना है, तो विहार करने वाली राशि कौन सी होती है, तो द्विंद्रिय से लेकर
पंचेंद्रिय।
देवों की यहाँ मुख्यता इसलिए नहीं ली थी कि देव भले विहार करते हैं परंतु तीर्यंचों की जो मैक्सिमम अवगाहना वाले जो तीर्यंच है, और मिनिमम अवगाहना वाले, मैक्सिमम अवगाहना वाले यानी वो तो स्वयं भ्रमण वाले जो महामत्स्य होते हैं उनकी बात ली थी, और मिनिमम अवगाहना इनका एवरेज भी निकालेंगे तो जो महामत्स्य जो है उत्कृष्ट अवगाहना वाले उनके आधे प्रमाण हो जाती है एवरेज, यानी उनकी मुख्यता से यहाँ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो उसके योजनों में आता है। फिर योजनाओं के हमने प्रमाण घनांगुल करके यहाँ बात बताई थी। अब यहाँ 37 नंबर के पृष्ठ पर आ गए हैं। यहाँ तो प्रश्न ये हुआ था कि विहार व स्वस्थान में उसका एरिया कितनी है, तो वहाँ कहा था कि लोक तिर्यक लोक का संख्यात भाग, तिर्यक लोक का संख्यात भाग, ये बात यहाँ आई थी। देखो पेज नंबर 32 निकालो, 32 पांच पेजेस पीछे चले जाओ। यहाँ जो नया पैराग्राफ है वहाँ पूछा था विहारवत स्वस्थान यानी विहार करने वालों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पूरे लोक में नहीं कहना क्योंकि एक इंद्रिय जीव विहार नहीं करते, एक इंद्रिय जीव स्वयं उनका विहार योगति वाला नाम कर्म नहीं है, वो गमन वाली बात वहाँ नहीं होती। तो कहते लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। ये लोक के असंख्यात वा भाग ये तो कह दिया उसी को अधोलोक और ऊर्ध्वलोक का भी असंख्यात वा भाग कहा क्योंकि उसी पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन में बताया था अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और उसी को अलग से बताना है तो कहते तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण। तो वो कैसे कैलकुलेट की वो बात यहाँ अपनी चल रही थी। उसके लिए उन्होंने बड़ी अवगाहना वाले जीवों की वो एरिया कैसे निकालनी वो भी बात बताई थी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अपने पेज नंबर 37 पर। यहाँ पूछा गया था इन्हें संख्यात योजन बताया था ना कि विहार व स्वस्थान में संख्यात घनांगुल की अवगाहना लेना है। तो कहते देव तो असंख्यात योजन का विहार करते हैं, देव असंख्यात योजन विहार करके चले जाते हैं। तो कहते हैं कि वो विहार करने वाले देव पूरे देव राशि के असंख्यात पे भाग मात्र होते हैं इसलिए उनकी प्रधानता नहीं है। अभी हम चौथी पुस्तक देखते हैं। आपने कौन सी लाई?
मैं
लाई नहीं, कोई बात नहीं।
फोन कर लेती ना।
हाँ देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 37। यहाँ हमारा विषय पूरा क्षेत्र संबंधी है, जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं वो बताने के लिए उनका रहने का ठिकाना पूरे लोक में है, का लोक का संख्यात वा भाग है क्या असंख्यात वा भाग है वो बात हो रही है। तो अलग अलग पद्धति से बताया जाता है पूरे लोक यानी पूरा सामान्य लोक, ऊर्ध्व लोक मध्य लोक से ऊपर, अधो लोक नीचे के सब पूरी सात राज्यों नीचे तक, तिर्यक लोक यानी ऐसा पूर्व पश्चिम एक राज्य और दक्षिणोत्तर सात राज्य और उसकी हाइट है 1,00,000 योजन, उसको तिर्यक लोक कहते हैं। तो इस तरह से इनकी अपेक्षा से कथन हो रहा है। बात यहाँ विहार करने वाले जीवों की बात हो रही है, विहार करने ने चलने वाले स्वयं गमन करने वाले, एक तो उनका रहने का ठिकाना और घूम कर कहाँ जा सकते हैं उसको कहेंगे विहारवत। जैसे हम रहते बम्बे में घूमने कहाँ अमेरिका तक घूम सकते हैं ना, हमें अभी जितने इन्होंने एरिया है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान चीन ये हम घूम सकते हैं यहाँ पर, ये विहार वाली एरिया। ऐसे तिरियंचों की विहार वाली एरिया ने द्विंद्रियों से लेकर सारे तिरियंच चलने वाले तिरियंच हैं, देव भी विहार करके आते हैं नीचे, यहाँ उनकी मुख्यता नहीं लेना अभी यहाँ पर स्पर्शन में लेंगे उसकी बात। इसलिए तिरियंचों की अपेक्षा उन्होंने ये उसको निकाला कि तिरियंचों की अवगाहना एवरेज जिसको कहेंगे एवरेज समझते ना, कोई बड़े वाले कोई छोटी अवगाहना उन दोनों का यानी उसको कहेंगे एवरेज यानी सरासर कहते हैं मराठी में हम उसको सरासरी कहते हैं,
सरासर
गुजराती में सरासर कहते हैं मराठी में सरासरी कहते हैं
हाँ। और हिंदी में
सरेराश तो गुजरात शब्द है ना कि गुजराती सरेराश है और हिंदी में सरासर है, एवरेज एवरेज तो सब समझते हैं। तो यहाँ देवों की प्रधानता नहीं है, तिरियंचों की प्रधानता से बात कर रहे थे। अभी देखो 37 नंबर के पेज पर ऊपर से तीसरी शंका है मिथ्या दृष्टि विहार व स्वस्थान राशि यानी गुणस्थान उनका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है और विहार करने वाले हैं राशि यानी उनकी संख्या उस राशि के रहने का क्षेत्र तिर्यक लोक के संख्यात विभाग मात्र कैसे है ऐसा पूछा गया। अब उसका उत्तर बताएंगे। 1,00,000 योजन में 7 का भाग देने से जितने सुचंगुल लब्ध आवे ये पूरा अर्थ बताऊंगी मैं, तत्प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक है। तिर्यक लोक कितना है उसको हम देखते हैं। तिर्यक लोक हमने क्या देखा था, एक राजो ऐसा है पूर्व पश्चिम दक्षिणोत्तर अंदर ऐसा सात राजू फैला हुआ है, और उसकी ऊंचाई जो हाइट जो है जो मेरू पर्वत की जो है वो एक एक लाख है, यानी हमारे और इन तीनों का गुणा करेंगे तो उसके एरिया मिलती है। जैसे हमारे घर का तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं कि ऐसा 15 फुट है और ऐसा 20 फुट है, तो 300 स्क्वायर फुट हुआ। परंतु अगर हाइट उसको 10 फुट हाइट से गुणा करेंगे तो 3000 घन फुट हो जाएगा, घने पूरी एरिया कवर हो जाएगी। समझ में आती है? ऐसे यहाँ तिर्यक लोक कैसा है, पूर्व पश्चिम एक राजू है, दक्षिणोत्तर सात राजू ऐसा फैला है, और हाइट उसकी कितनी, जितनी मेरू पर्वत की है, 1 लाख हो जाए। तो हम तीन ये जो डायमेंशंस है उसको गुणा करने से हमको घनफल मिलता है। तो एक बाजू है एक राजू, दूसरी बाजू है सात राजू, और है 1 लाख योजन है, और ये तो राजू में। इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमको तिर्यक लोक मिलेगा। उसका उन्होंने कैसा बताया था, देखो तो 1 लाख योजन में 7 का भाग देने पर जितने सुच्छंगुल आते हैं तत्प्रमाण बाहुल्य रूप, उतने बाहुल्य वाला जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक। अभी सुच्छंगुल को भी भूल जाओ, अभी योजनों में ही करेंगे हम। तो उन्होंने ये बताया 1 लाख योजन जो है उसको 7 का भाग दे, यानी 1 लाख का 7वां भाग, इतने जगत प्रतर। जगत प्रतर कैसे निकलता है, 7 राजू गुना 7 राजू को जगत प्रतर कहते हैं, 7 राजू को जगत श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ 7 का, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ 7 अगर हम लिखना है, 7 राजू गुना 7 राजू जगत प्रतर होता है, तो हमने 1 के बदले 7 लिखा, तो भाग उसको 7 से भाग भी दो तो संख्या वही होगी। तो ये 7 हमने यहाँ लिखा क्योंकि ये सारे गुणकार है ना। तो 7 राजू गुना 7 राजू जगत प्रतर कहलाता है, और जगत प्रतर को लाख के 7वें भाग प्रमाण योजनों से गुणा करो तो योजनों में मिलेगा हमको, यानी राजू और इतना बाहुल्य वाला योजन। परंतु वहां उसको उन्होंने अंगुलों में किया है, तो कल अपना वो उदाहरण हुआ था सब। तो एक ये तो 1 लाख योजन, ये तो प्रमाण योजन है, और उसके प्रमाण अंगुल करना है, तो 7,68,000 एक योजन में एक सुच्चंगुल कितने होते हैं एक योजन के, एक योजन के सुच्चंगुल कितने होते हैं, 7,68,000 होते हैं। ये कैसे निकाले, देखो एक माप है कि कितने अंगुलों का एक हाथ होता है, तो 24 अंगुल, अंगुल नहीं इतना प्रमाण, 24 अंगुल का एक हाथ होता है, 4 हाथ का एक धनुष कहलाता है, 24 चौक हो गया, 2000 धनुष का एक कोष होता है, और 4 कोष का एक योजन होता है। इस सबको आपस में गुणा करेंगे हम तो एक योजन में कितने आता है, तो ये 24 × 4 × 4 करके उसको 2000 से गुणा करना, तो उसका प्रमाण कितना आता है, 7,68,000। ये अंगुलों में बात चल रही, इसको ही अंगुल को ही सुच्चंगुल कहते हैं, उसी को उच्छेदांगुल कहते हैं। तो हमें ये अंगुलों में निकालना है, तो 1 लाख योजन के अंगुल कितने हो गए, 1 लाख को इतना गुणा करना और उसको 7 से भाग देना, इतने अंगुल आ जाएंगे अपने, यानी जगत प्रतर की मोटाई कितनी करना, 7 राजू × 7 राजू तो जगत प्रतर हुआ, जगत प्रतर को गुणा करना अंगुलों से, कितने अंगुलों से, 7,68,000 लाख करना उसको इंटू लाख, और उसको 7 से भाग देना, इतने अंगुल हो जाएगी। फिर अभी इसको पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। देखो ये वाक्य फिर पढ़ते, 1 लाख योजन में 7 का भाग देने से, 7 का भाग क्यों दिया समझ में आई ना बात, जितने सुच्चंगुल लब्ध आवे तत्प्रमाण बाहुल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक है, इसे पूर्वोक्त विहारवत स्वस्थान रूप क्षेत्र से भाजित करने पर, ये पूरा तिर्यक लोक है, और उसमें से विहार वस्त्र स्थान का जो क्षेत्र है उससे उसको भाग देना, वो तो उन्होंने पहले बताया था कितना होता है, तो वो संख्यात होता है, संख्यात रूप लब्ध आवे। इसीलिए तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में मिथ्या दृष्टि विहारवत स्वस्थान राशि रहती है ऐसा कहते हैं। यानी वो कैसा त्रय राशि क्या, 1,00,000 योजन में 7,68,000 अंगुल, तो 1,00,000 के सातवें भाग में कितने हो, तो 1,00,000 इंटू वो 7,68,000 डिवाइडेड बाय 7 करना, अभी इसी का विशेषण इसी को समझा रहे। फिर दोबारा तिर्यक लोक देखो, एक होता है ऊर्ध्व लोक, एक होता है अधोलोक, एक तिर्यक लोक है मध्य में, वो तो 1,00,000 योजन वाली हाइट वाली इतनी है, बाकी तो अधोलोक ऊर्ध्व लोक तो 7-7 राज्यों वाले, परंतु ये पूर्व पश्चिम एक राज्य और राज्य पूरा अंदर तक फैला हुआ 7 राज्य। तिर्यक लोक पूर्व पश्चिम एक राजू चौड़ा और उत्तर दक्षिण 7 राजू लंबा, और उसकी हाइट कितनी लेना, जितने मेरू की 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसे जगत प्रतर रूप से करने के लिए, जगत प्रतर रूप करना है ना, वो हम 7 राजू होना, 7 राजू हमको जगत प्रतर का एक अकेला निकालेंगे तो वहां 1 राजू इंटू 7 राजू था, इसलिए हमने 7 राजू डिवाइडेड बाय 7 राजू किया, वैल्यू उतनी रखी और जगत प्रतर मिले, और वहां लाख के बदले उसका 7वां भाग लेना, राजू को 7 गुणा किया, यहाँ 7 गुणा किया, वहां 7वां भाग किया, हमारे कीमत उतनी की उतनी रहेगी। तो जगत प्रतर रूप से करने के लिए 1,00,000 योजन में 7 का भाग देना चाहिए, क्योंकि तिर्यक लोक भी उत्तर दक्षिण 7 राजू तो है ही, किंतु पूर्व पश्चिम जो 1 राजू मात्र है उसे 7 राजू प्रमाण प्रकल्पित करने के लिए, उसको कल्पना किया, 7 राजू की कल्पना की, उसको मान लिया, 1 राजू के बदले 7 राजू मान लिया, तो लाख का 7वां भाग किया, उच्छेद में 7 का भाग देने से उच्छेद यानी उसकी हाइट, तिर्यक लोक की हाइट 1,00,000 योजन का 7वां भाग रह जाता है, और पूर्व पश्चिम में 7 राजू प्रमाण क्षेत्र हो जाते हैं, हमने वो 7 गुणा किया और उसको 7वां भाग किया। इस प्रकार 1,00,000 योजन के पेज नंबर 37 सातवें भाग में जितने सूचंगुल हो गए, एक योजन में तो 7,68,000 एक योजन में, तो लाख के सातवें भाग में कितने होंगे उसको हम गुणा करेंगे। तत्प्रमाण बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण तिर्यक लोक आ जाता है।
बाहल्य यानी मोटाई,
बाहल्य उसकी मोटाई, एक योजन में 7,68,000 सूचंगुल होते हैं, इसलिए 1,00,000 योजन के सातवें भाग में इतने सूचंगुल हो गए। कितने हैं देखो, 10 अबज हो जाएंगे, 97,00,000 97 करोड़, 10 अबज 97 करोड़, 14,28,571। एक जन खुर्ची बसाऊंगे ते दोगी न हो, सूचंगुल हो गए, अतएव इतने सूचंगुल प्रमाण जगत प्रतर तिर्यक लोक जानना चाहिए। उनको लिखना है तो आप वहां बैठना, बेन आप कोई ऊपर बैठो उनके साथ, उनको लिखना है, उनकी पुस्तक है ना। हाँ, एक जन, तीन जन कैसे देखेंगे, कोई एक ऊपर देखा उनकी पुस्तक में देखें। नहीं नहीं वही ठीक है, आपको जितना जहाँ चाहिए वहाँ बैठो। चलो यहाँ तक समझ में आई ना हमने कैसे कैलकुलेट किया। प्रतरांगुल के नीचे से अभी पांचवी लाइन में आ गए हैं। कल जो हमने देखा था ना, देखो तिर्यक लोग कितना, एक राजू गुना सात राजू गुना एक लाख, तो एक राजू के बदले हमने सात राजू मान लिया तो सात से भाग देना पड़ेगा। वो सात का भागार हमने लाख के नीचे लिखा, और यहाँ सात राजू गुना सात राजू किया तो जगत प्रतर हो गया, और लाख का सातवां भाग है उसके अंगुल करना, एक योजन में 7,68,000 अंगुल, तो एक लाख के सातवें भाग में कितने अंगुल, तो ये अभी 10,97,00,000,000 ये जो संख्या आई है इतने अंगुल होते हैं
28,000
इतने जगत प्रतर। जगत प्रतर को इस संख्या से गुणा करे तो इतना तिर्यक लोक है,
सत्यंगल होंगे ना,
इतने सुच्चंगुल प्रमाण जगत प्रतर, यानी जगत प्रतर को इतने सुच्चंगुलों से गुणा। जगत प्रतर तो कैसा हुआ, देखो सात राजो और सात राजो, और हाइट कितने लेना, लाख का सातवां भाग, ये योजनों में रंगुल में कहना है तो इतने। आगे बढ़ते देखो, प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण आता है। हमने जब गति मार्गणा में या काय मार्गणा में देखे थे, पहले अपना द्रव्य प्रमाण अनुगम संख्या वाली बात तीसरी पुस्तक में देखी थी, त्रस पर्याप्त राशि कितनी होती है, पर्याप्त त्रस राशि समझते, द्विंद्रिय से लेकर सभी, तो जगत प्रतर यानी वो तो हमने क्षेत्र में संख्या बताई थी, तो जगत प्रतर को हमने प्रतरांगुल के संख्यात्व भाग का भाग दिया था, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय संख्या, तो त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण आता है, और इसके संख्यात एक भाग प्रमाण विहारवत स्वस्थान राशि है। सभी तो राशि अपने अपने जगह में रहती है, परंतु दूर विहार करके जाने वाले उसके संख्यात वे भाग प्रमाण ही हो गए, ज्यादा नहीं हो गए। विहारवत स्वस्थान राशि में एक जीव की मध्यम अवगाहना संख्यात घनांगुल है, ये तो पहले उन्होंने निकाल के बताया था अपने को, तो पूर्वोक्त राशि का कितना क्षेत्र होगा, यानी एक जीव के अवगाहना संख्यात घनांगुल, तो अभी हमने जो राशि निकाली है पर्याप्त त्रस राशि के संख्यात विभाग प्रमाण विहार करने वाले हैं, उस संख्या को संख्यात घनांगुल से गुणा करेंगे। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर विहार व स्वस्थान राशि का क्षेत्र संख्यात सुचंगुल गुणित जगत प्रतर प्रमाण आ जाता है, जो तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग प्रमाण है, जो अभी हमने देखा था। देखो तिर्यक लोक एक राजु गुना सात राजु गुना एक लाख योजन था, वो कैसे निकालना, वो लाख के नीचे उसका सातवां भाग चला गया, ये हमने दो तीन बार ये गणित देख लिया। अभी अब हम आगे बढ़ते 38 नंबर के पृष्ठ पर आना। अब ये पूरे मध्य लोक यानी तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण हमने देखा, परंतु हमारे पास लोक अलग अलग है, पूरे लोक का असंख्यात भाग देखा था, उसी को तिर्यक लोक का संख्यात भाग बताया, अब उसी को ढाई द्वीप से मनुष्य लोक से कितने गुना है वो बताएंगे, क्षेत्र कितना है, जैसे हमारा पास हमारा जो घर है वो कितना बड़ा है, तो पूरे बम्बई का तो इतना भाग है ऐसा कहेंगे, और हमारे किचन की एरिया से कितना है तो हम कहेंगे चार गुना है ढाई गुना है जो कुछ, इस तरह से यहाँ लेना है। पूरे लोक का असंख्यात भाग था, तिर्यक लोक का संख्यात भाग था, परंतु ढाई द्वीप की अपेक्षा कितना है ये बता रहे हैं, हाँ यही बात यहाँ बता रहे हैं। तो विहार व स्वस्थान जीवों का क्षेत्र ढाई द्वीप से असंख्यात गुना है, क्योंकि द्वीप समुद्र ये कितने असंख्यात है, और वो केवल असंख्यात नहीं उनकी एरिया भी कितनी दुगुनी 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 होती है, तो पूरा तिर्यक लोक कितना बड़ा है, समझ में आती है। तो ये मनुष्य लोग जो है ढाई द्वीप वाले 45 लाख योजन वाले विस्तार, उससे वो असंख्यात गुणा क्षेत्र है, क्योंकि अढ़ाई द्वीप में संख्यात प्रमाण घनांगुल ही देखे जाते हैं, क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं, ढाई द्वीप यानी 45 लाख योजन, वो 45 लाख योजन यानी वो 45 लाख योजन में प्रमाण योजन है, तो एक योजन में कितने अंगुल होते हैं वो प्रमाण अंगुल ही हो गए, 7,68,000 होते हैं, उसको 45 लाख से गुणा करो तो भी कितने हो गए, संख्यात हो गए, असंख्यात तो नहीं हो गए, ये कहना चाहते। तो अढ़ाई द्वीप में संख्यात प्रमाण घनांगुल ही देखे जाते हैं, तो बस अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणा एक हो गया। हमने अलग अलग बातें देखी थी, कैसे कैसी, एक तो होता है स्वस्थान, स्वस्थान रहने का ठिकाना, एक होता है विहार और स्वस्थान, विहार करके कहाँ कहाँ घूमते हैं उसकी बात है। फिर वेदना समुद्घात देखा, वो तिगुणा होता है, कषाय समुद्घात, वो एक ही जीव का तिगुणा, ऐसा तिगुणा ऐसा तिगुणा हो सकता है, वो तो पूरा लोक के एरिया हमने पहले देखे। अब रहा हमारा वैक्रियक समुद्घात मारणांतिक्रमण, उसकी बात अभी करेंगे। वैक्रियक मारणांतिक समुद्घात भी पूरे लोक में हमने देखा था, क्योंकि सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में है, वो मारणांतिक करेंगे तो पूरे लोक में मारणांतिक समुद्घात हो जाता है। उसके बाद अभी वैक्रियक समुद्घात की बात होगी। वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त हुए और ये हमारे गुणस्थानों में लगाना है, मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, देखो वैक्रियक शरीर वाले कौन कौन है, देव और नारकी, अन्य भी मनुष्य करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे विक्रिया, उसकी बात अभी तो छोड़ देते हैं। तो नारकी तो अपने बिलों से बाहर तो कहीं जाते नहीं, और शरीर को विक्रिया अनेक विशरीर नहीं बनाते हैं, अपने ही शरीर को छोटा बड़ा या अन्य अन्य रूप धारण करते हैं नारकी। देव होते तो एक ही देव अनेक विक्रिया से उन्हें शरीर ज्यादा भी बना सकते हैं। तो वो कितने क्षेत्र में रहते पहले कहें, पूरा लोक तो ऑक्युपाई नहीं करेंगे, जहाँ रहते हैं और विक्रिया करके जहाँ जाते हैं उतना क्षेत्र लेना है। तो सर्वलोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते, क्योंकि देव भी विक्रिया करके आप कहेंगे यहाँ मनुष्य लोक में भी आते हैं ना, पंच कल्याणक में वगैरह वगैरह जाते हैं, तो फिर भी वो लोक का असंख्यात भाग होता है, क्योंकि एट ए टाइम कितने देव करेंगे, भूतकाल की अपेक्षा कभी ना कभी किसी न किसी ने किया, वो बात अभी नहीं लेना, अभी तो क्षेत्र कैलकुलेट करना, तो वो पूरे लोक का असंख्यात भाग एरिया होता है उसका। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक की अपेक्षा बात करेंगे तो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के भी असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, क्योंकि आप कहेंगे सारे देव तो ऊर्ध्वलोक में सब जगह रहते हैं ना, सब जगह नहीं रहते, उनका अपना अपना रहने का ठिकाना है, अपने अपने विमानों में रहेंगे, जैसे पहले पृथ्वी, पहला उनका स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, या पहले दूसरे और तीसरे चौथे में, बीच में अंतराल भी है ना, बहुत से बड़े बड़े अंतराल भी है बीच में। तो कहते हैं कि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के भी असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, यानी वही एरिया हम तिर्यक लोक की अपेक्षा कैलकुलेट करेंगे तो तिर्यक लोक का संख्यात भाग हो जाता है। यानी यहाँ ऐसा नहीं समझना कि तिर्यक लोक में रहने वाले जो उनकी अपेक्षा, देव और नारकी जो विक्रिया करते हैं उनकी अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, कैसी जीवों की राशि संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगाहना, और विक्रिया करके कहाँ तक जा सकते उसका क्षेत्र, इनका आपस में गुणा करने से हमको उनके एरिया मिलती है, वो एरिया तिर्यक लोक के कितने भाग प्रमाण है। ये जरूरी नहीं कि विक्रिया करने वालों को तिर्यक लोक में रहना चाहिए, वो बात नहीं हो रही यहाँ पर, केवल एरिया को हमको कंसीडर करना है, वो एरिया। ये अभी हमने तिर्यक लोक की एरिया देखी कितनी, जगत प्रतर को इतने संख्या सूचंगुल से गुणा करना, इतनी तो तिर्यक लोक की एरिया है, उसके भी संख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र हो जाता है इनका। अभी अढ़ाई द्वीप की अपेक्षा से उसको बताना है, उसी क्षेत्र को ढाई द्वीप की अपेक्षा बताना है, तो कहते वो असंख्यात गुणा क्षेत्र में रहते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ढाई द्वीप में कोई नहीं रहते उसके बाहर, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। जो हमने एरिया कैलकुलेट की है वो ढाई द्वीप कितना है, तो 45 लाख वजन वाला है, और उसको लाख से भी गुणा करो तो भी उसकी जो एरिया है उससे ये असंख्यात गुणा एरिया कैलकुलेशन में आ जाती है। ये पूरा जो अभी इसमें तो क्षेत्र भी है, स्पर्शन भी और काल भी है, तो उसमें उतनी क्षेत्र क्षेत्र की बात हो जाएगी, विहार करने की अपेक्षा, मारणांतिक की अपेक्षा, ये सब कैलकुलेशन क्षेत्र के बारे में है यहाँ पर। तो यहाँ पूछा गया था वैक्रिक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि जीव, यह मिथ्या दृष्टि शब्द और लगाया क्योंकि गुणस्थानों में हमको लगाना है, सभी गुणस्थानों में लगाएंगे, बाद में मारगणाओं में लगाएंगे, नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ, यानी देवों में फिर मिथ्या दृष्टि, नारकियों में मिथ्या दृष्टि, मनुष्य तिरंचों में मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि, इस तरह से बात करेंगे। तो सर्वलोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में देखो, प्रत्येक एरिया है अलग अलग, लोक के कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है, अधोलोक का कितना भाग है, तिर्यक लोक का कितना है और मनुष्य लोक का कितना है। ये पांच पद्धति से उसकी कथन होगी। कौन कौन से पांच देखे, पूरा लोक का कितना भाग है, ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है, अधोलोक की अपेक्षा वो कितने भाग प्रमाण है, तिर्यक लोक की अपेक्षा वही क्षेत्र कितने भाग प्रमाण है और मनुष्य लोक की अपेक्षा वही क्षेत्र कितना है। ये हर जो हमारी विषय चलेगी उसमें ये पांच की अपेक्षा बात बताएंगे। जहाँ पूरा लोक होता है वहाँ फिर अन्य का नाम लेने की जरूरत नहीं रहती, ऊर्ध्व लोक का कितना है, ये कितना है,
अपेक्षा से कथन किया है।
हाँ, जब पूरा लोक प्रमाण हो जाता है तो अन्य चारों की बात ही नहीं उठाते, इसके कितने भाग प्रमाण है, क्योंकि जो पूरा एरिया है वो तो मनुष्य लोक के असंख्यात गुना होगा ही होगा, ऊर्ध्व लोक पूरे से उससे संख्यात गुना होगा, अधो लोक से संख्यात गुना होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी हमने पढ़ा पूरे लोक का असंख्यात विभाग, वही बात है वो ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र को हम तिर्यक लोक की अपेक्षा कहेंगे, तो तिर्यक लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, उसी को ढाई द्वीप में बताना है, तो अढ़ाई द्वीप से यानी मनुष्य लोक से, मनुष्य जो असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर अपवर्तना पहले के समान कर लेना चाहिए। अपवर्तना करना यानी वो तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना, अपवर्तन करना एक्चुअली उसको ऊपर नीचे देके भाग देते हैं ना, उसका संख्या का भाग वगैरह। इतनी विशेषता है कि अभी यहाँ किसकी मुख्यता लेना, देखो हमने पहले विहार करने वालों में तिरंचों की मुख्यता ली थी, ग्रीन्द्रिया से लेकर बड़ी अवगाहना वालों की अपेक्षा बात की थी, अब यहाँ देवों की मुख्यता लेना, और देवों में भी ज्योतिष राशि को लेना। देखो इतनी विशेषता है कि वैकृत समुद्रात में सात धनुष उच्छेद रूप अवगाहना से युक्त, ये उनकी अवगाहना है, हाइट कितनी है, सात धनुष, ज्योतिष देव राशि प्रधान है, क्योंकि सभी देवों में ज्योतिष राशि की मेजोरिटी है, बाकी सारे जो है वही भवनवासी, यानी भवनवासी है, व्यंतर है, विमानवासी है, सब मिलकर भी ज्योतिष राशि के संख्यात विभाग प्रमाण हो जाते हैं, इसलिए इनके संख्या सबसे ज्यादा है, और इनका हाइट कितने, सात धनुष, तो मेजॉरिटी में ये लेना है, उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। तो यहाँ कहते सात धनुष उच्छेद रूप, उच्छेद यानी हाइट, अवगाहना से युक्त ज्योतिष देव राशि प्रधान है, उसकी मुख्यता है, इसलिए ज्योतिष देवों के संख्यात विभाग प्रमाण यानी पूरे जो देव राशि है उसके संख्यात विभाग प्रमाण उसकी विक्रिया करते हैं। वैक्रिय समुद्रात युक्त राशि का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणकार स्थापित करना चाहिए, संख्या क्योंकि सात धनुष के यहाँ उनको अंगुल बनाए, कितने हो गए, संख्यात हो गए, अभी उसको कैलकुलेशन छोड़ भी दो तो उसको संख्यात घनांगुल कहेंगे, क्योंकि संख्यात हजार योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव पाए जाते हैं। वो कहाँ तक विक्रिया करेंगे, संख्यात हजार योजन, क्योंकि देव ज्योतिषियों की मुख्यता ली है वैसे भी। शंका, असंख्यात योजन क्षेत्र को रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाए जाते हैं, इतनी बड़ी भी विक्रिया करेंगे तो असंख्यात योजन को वो तो वहां तक वो उनको विक्रिया करके चले जाएंगे, क्योंकि वो देव जाते ऊपर के देव भी वो नीचे दूसरे नरक तक भी जाते हैं ना, तो विक्रिया करके उनके प्रदेश इतने फैल जाएंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवों के असंख्यात विभाग मात्र ही होते हैं, ये पहले भी एक बार बता चुके थे, विहारवत में भी बता चुके थे, यानी वो बड़ी विक्रिया नहीं, लंबे जाने वाले देव बहुत थोड़े हो गए, मेजॉरिटी वो नहीं होगी। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं, परंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, अपने अवधि प्रमाण क्षेत्र कितना, जितना ऊपर उनका जो रहने का उतना ही नीचे तक उनका अवधि से जानते हैं। आपको यहाँ बताएं क्या, उसमें से जीवकांड की पुस्तक देना मुझे दूसरे नंबर की, उसमें संदृष्टि में बताऊंगी, लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में
वहाँ कवर
यू लिखा है, यू
यू लीले बारीक एक झाड़ है, एक पत्र है,
वो छोटी वाली देना, पतली वाली। यू लिखा है ना, वो ब्लू में
हाँ झाड़ है का,
वो पतली वाली है, हाँ वही देना। इन्हें देवों का अवधि क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, देखो गमन शक्ति होनी अलग बात है, परंतु वो विहार करके नहीं जाएंगे, जैसे सर्वार सिद्धि वाले हैं और सातवें नरक तक गमन की शक्ति भी अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का भी क्षेत्र, परंतु वो जाएंगे नहीं, क्योंकि ग्रेवेग वाले तो आते ही नहीं नीचे। सोलहवें स्वर्ग वाले जो शुक्ल लिशा वाले, वो भी मनुष्य लोक तक ही आते हैं, नीचे नहीं जाते। और सहस्रार तक के हैं वो नीचे तक जाते, कहाँ तक, दूसरे नरक तक, तीसरे नरक तक, दो राजू नीचे तक, तीसरे नरक तक। देखो ये अवधि क्षेत्र में बताना चाहती हूँ आपको, इसमें एक चित्र बनाया है लोकाकाश का, कहाँ तक जानते हैं उसकी बात है उसके अंदर। ज्ञान मार्गना है, पेज नंबर 1003 है। यानी हाँ जीव कांड की जो है ना दूसरा भाग 1002 और 1003
अर्थ संदृष्टि में
पीछे एक यही बात पहले भी लिखी है, परंतु यहाँ मुझे जल्दी मिल जाएगी इसलिए मैं यहाँ से दूसरा भाग 1002 पेज से मैं अभी पढ़ के बताऊँ। देखो स्वधर्म युगल वालों के रत्न प्रभा पर्यंत अवधि क्षेत्र है, स्वधर्म ईशान के रत्न प्रभा तक यानी पहली पृथ्वी तक अवधि का क्षेत्र है, यानी वो अपना विमान से हाई उनकी डेढ़ राज्य ऊपर तक है और वो रत्न प्रभा तक है उसका। सनत कुमार युगल वालों के शर्करा प्रभा पर्यंत अवधि क्षेत्र है, यानी वहां से चार राज्य हो गया। ऐसे अन्य की भी ऊंचाई का प्रमाण जानना, यानी वो उसमें कितने राजू प्रमाण उसकी हाइट है वो उसके आगे उन्होंने बताए हैं और नीचे उसकी पृथ्वियों के नाम है। इसका वर्णन अधिक वर्णन मूल इसमें है पुस्तक में, यहाँ ज्यादा उसकी केवल संदृष्टि बनाई है।
ज्ञान मार्गना वगैरह,
हाँ ये ज्ञान मार्गना में यानी उसका घनफल करने पर सौधर्म द्वीप के लिए डेढ़, फिर आगे सनत कुमार के लिए चार, फिर साढ़े पांच, छ, साढ़े सात, आठ, साढ़े नौ, दस, ग्यारह और तेरह, किंचित कम 14 घन राजु मात्र क्षेत्र होता है, क्योंकि वो जो उसकी एरिया है ना उतने नीचे तक चले जाना है। अवधि क्षेत्र अपना अपना जो होता है, यानी देशावधि, हाँ भवनवासियों का कितना होता है कि रुजु विमान के शिखर तक होता है, यानी असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन हो जाता है आड़ा और नीचे अपने अपने विमान तक, आड़ा ज्यादा है यह असुर कुमार वगैरह का। कल्पवासी देवों में हमने देखा सौधर्म ईशान का त्रसनाली में डेढ़ राजु तक यानी रत्न प्रभा के अंत तक, वो तो असुर कुमार की बात।
जीव कांड ज्ञान मार्ग में अवधि ज्ञान में ये सब है, ये दूसरा भाग अर्थ संदृष्टि देख रही
है, ये धवला में भी आगे आने वाली बात है। सनत कुमार का चार राजू प्रमाण, त्रस नाली में चार राजू तक, यानी वो कहाँ तक, तो शर्करा प्रभा के अंत तक। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर का 5.5 राजू वालू का प्रभा तक। लांतो कापिष्ट का 6 राजू, वो भी वहां तक। शुक्र महाशुक्र का 7.5 राजू पंक प्रभा तक। शतार सहस्रार का 8 राजू, वो भी पंक प्रभा तक। आनत प्राणत 9.5 राजू, आरण अच्युत 10 राजू धूम्र प्रभा तक, दोनों को। नव ग्रहवेग 11 राजू तम प्रभा। नव अनुदिश ये कुछ अधिक 11 राजू, फिर उसी को 13 राजू भी लिखा, और अनुत्तर के लिए कुछ कम 14 राजू।
इतने क्षेत्र
अपने अपने ध्वजा ऊपर की ओर अपने अपने ध्वजा तक होती, उसके ऊपर उनका अवधि नहीं लगता, और आड़ा अनेक योजनाओं तक होता। बात यहाँ क्या कहना चाहते थे देखो,
समाधान
प्रशंका थे कि असंख्यात योजन क्षेत्र को रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाए जाते हैं, उसका समाधान नहीं, क्योंकि असंख्यात योजन प्रमाण विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवों के असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि सभी देव अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं, उनका यह कथन घटित नहीं होता। गमन शक्ति होना अलग बात है और विक्रिया करने की बात अलग, क्योंकि वैकिरिक समुद्घात को प्राप्त हुई राशि तिर्यक लोक के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। तिर्यक लोक का भी संख्यात भाग लिया ऐसा व्याख्यान देखा जाता है। मिथ्यादृष्टि जीव राशि के शेष 3 विशेषण देखो, क्या क्या लगाया अभी हमने, स्वस्थान स्वस्थान देखा, विहार व स्वस्थान देखा, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकिरिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपोपाद, इतने सब देख लिए। अब कहते हैं उनको आहार समुद्घात होगा कि नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि को तेजस समुद्घात होगा, वो किसके होता है आहार समुद्घात, आहार की रिद्धिधारी मुनिराजों को 6 गुणस्थान में, और यह मिथ्या दृष्टि की बात है। तेजस समुद्घात भी मुनिराजों के होता है, वो भी नहीं होगा, केवली समुद्घात को केवली के होता है, तो ये 3 बातें उनके होगी ही नहीं मिथ्या दृष्टि को। अपनी बात मिथ्या दृष्टि की क्षेत्र निकालने की चल रही, तो मिथ्या दृष्टि जीव राशि के शेष 3 विशेषण अर्थात आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात और केवली समुद्घात संभव नहीं है, क्योंकि इनके कारणभूत संयमादि गुणों का मिथ्या दृष्टि के अभाव है। तो कोई मिथ्या दृष्टि संयम धारण करे बाह्य में, तो उसके ये होगे कि नहीं होगे, उसका गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है। बाह्य में व्रत धारण करने से उसका गुणस्थान ऊपर का नहीं होता, आत्मानुभव हो जाने पर अंतरंग में जितनी स्थिरता है तभी ऊपर के गुणस्थान हो गए, केवल बाहर में वस्त्र का त्याग किया नग्न हो गए इसलिए उम्र हो गए ऐसा नहीं है। लोगों को तो यही दिखता है ना, तो उसी को मुनिपना मान लेते, पर उनके ये ना ही उनके गुणस्थान पलटेगा और ना ही उनके कोई ये रिद्धि होगी। अब यहाँ 39 पेज पर आ गए हम, शंका। स्वस्थानादि 7 विशेषण सूत्र में नहीं कहे गए हैं, फिर भी वे मिथ्या दृष्टि जीव के पाए जाते हैं, यह कैसे जाना जाता है? सूत्र में तो मिथ्या दृष्टि कितने एरिया में वो स्वस्थान है वगैरह ऐसा बताया है, तो आपने ये कहाँ से निकाली बात? उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि जीव के स्वस्थान आदि 7 विशेषण पाए जाते हैं, यह बात आचार्य परंपरा से आए हुए उपदेश से जानी जाती है, और हम भी उसको विचार करते तो सिद्ध होता है ना कि विक्रिया केवल समय दृष्टि करते ऐसे थोड़े ही है, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। विहार करने वाले मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि दोनों हो गए, परंतु उनके आहारक तेजस और केवली समुद्घात नहीं होगा, बाकी 7 तो हो गए। दूसरी बात यह है कि सूत्र में आए हुए मिथ्या दृष्टि सामान्य वचन से स्वस्थान आदि सात विशेषण भी मिथ्या दृष्टि के विशेष है यह सूचित हो ही जाता है। पेज नंबर 39 पर समाधान का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं कि जो हमने ये जो सात विशेषण जो है वो मिथ्या दृष्टि के ही पाए, कौन से तीन विशेषण नहीं पाए जाते अभी हमने देखे हैं, आहारक, तेजस और केवली समुदाय, ये उनके नहीं होते, बाकी सात होते हैं। तो यहाँ लिखा दूसरी बात यह है कि सूत्र में आए हुए क्या हो रहा है, मिथ्या दृष्टि सामान्य वचन से स्वस्थान आदि सात विशेषण भी मिथ्या दृष्टि के विशेष है यह सूचित हो ही जाता है, क्योंकि इनको छोड़कर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं पाए जाते। यानी स्वस्थान तो सबको होगा ना, मिथ्या दृष्टि हो या समय अपना रहने का ठिकान तो होगा ही होगा सबको। इसी प्रकार घनलोक के अतिरिक्त, घनलोक यानी पूरा लोक और उसको छोड़कर ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यक लोक और अढ़ाई द्वीप संबंधी लोक, ये चार लोक भी सूत्र से सूचित हो ही जाते हैं। ये मिथ्या दृष्टि की बात है, उसमें ये सात विशेषण भी लागू हुए, आहारक, तेजस और केवली उनमें नहीं लगा, और फिर पूरे लोक के कितने भाग में ऊर्ध्व लोक के वो सब उसमें लागू हो जाता है, क्योंकि घन लोक से पृथक भूत उपर्युक्त शेष चार लोक नहीं पाए जाते। क्या कहना चाहते हैं, घन लोक है ना पूरा लोक, तो पूरे लोक के ये भाग है ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक या कहो या तिर्यक लोक कहो या मनुष्य लोक, ये लोक के ही उसके भाग है, इसलिए उसमें सूत्र में जो बात बताई वो इसमें भी घटित हो जाती है। इसलिए स्वस्थान, स्वस्थान राशि आदि का व्याख्यान सूत्र से संबद्ध ही है, यानी सूत्र से विरुद्ध कोई बात नहीं है। तो यहाँ तो अभी पहले गुणस्थान की बात हुई कि मिथ्या दृष्टि राशि कहाँ कहाँ रहती है, अब सासाधन वालों की बात करेंगे, हर एक गुणस्थान की बात बताएंगे। क्या प्रश्न है? दूसरा गुणस्थान, दूसरा, तीसरे का नाम है सम्यक मिथ्या, तीसरे का नाम है सम्यक मिथ्या दृष्टि।
हेलो,
तभी हम सूत्र पहले पढ़ेंगे ऊपर तीन नंबर का, शासन सम्मा इट्ठी पहुड़ी जाव अजोगी केवली ती केवड़ी खेते लोगस असंके जदि भाए। देखो अजोगी करना, अजागी हुआ है ना, अजोगी हिंदी उसका अर्थ देखते देखो, सासाधन सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सासाधन सम्य दृष्टि कौन है, तो संगी पंचेंद्रियों में से जो कोई प्रथमोपशम सम्यक से गिर कर आए उनकी संख्या तो बहुत कम होगी, मैक्सिमम होगी तो भी हमने कितनी देखी थी याद है कि भूल गए, पल्ल के असंख्यात भाग प्रमाण, तो कहते उनका रहने का ठिकाना, अरे टोटल संगी पंचेंद्रिय लेंगे तो भी रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात अभाव होता है, क्योंकि बीच बीच में नरकों में तो असंख्यात योजन उनका अंतराल है, उनकी अपनी अपनी एरिया तो कम है, उसमें उनकी उनकी अवगाहना कैलकुलेट करनी है। तो ये जो सासाधन वाले उनकी एरिया कितनी है, तो लोक का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यद्यपि व्यवस्थावाची प्रभृति शब्द के बल से, प्रभृति यानी आदि, सासाधन आदि कहने से सब आ गए, सभी गुणस्थानों का संग्रह संभव है, तो भी यहाँ पर संयोगी केवली गुणस्थान का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था, सासाधन से लेकर अयोगी तक संयोग के छोड़ देना, क्योंकि वो केवली समुदाय करते तो पूरा लोग कवर अप हो जाता, उसकी बात अलग से बताएंगे, क्योंकि केवली समुदाय उनके होता है तेरहवें गुणस्थान वाले का, तो पूरे लोक में स्प्रेड आउट हो जाएगी, तो उसकी विशेष बात बाद में बताएंगे, क्योंकि आगे कहा जाने वाला इसका बाधक सूत्र देखा जाता है, क्योंकि जो विशेषता है उसकी बात कहेंगे आगे। यहाँ बताया कि यहाँ तक दूसरे से लेकर चौदहवें तक आगे कहेंगे, परंतु सहयोगी की विशेष बात बताएंगे बाद में। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात रूप से परिणत हुए। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, इसे लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में, ऊर्ध्वलोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तीन यानी ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक, तिर्यक लोक का भी असंख्यातवा भाग लिया क्योंकि ये जीव कम है ना, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब इसको कैसे निकाला, ये उन्होंने क्यों कहा ऐसा, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जीवों की अवगाहना एवरेज, और उसको गुणा करेंगे हम उनकी संख्या से तो उनकी उनके एरिया मिलेगी। तब यहाँ देखते, देखो इन तीन गुणस्थानों में सौधर्म और ऐशान कल्प संबंधी देव राशि प्रधान है। ये मुख्यतः किसके लेना है, सौधर्म ऐशान वालों। वैसे ये गुणस्थान तो सभी चारों गति वालों को होंगे, परंतु जिनकी मेजॉरिटी उनकी बात यहाँ लेंगे, उनकी अपेक्षा से बात निकालेंगे। उनकी अवगाहना सात हाथ उच्छेद रूप है। पहले हमने ज्योतिष की बात निकाली थी, सात धनुष थी ना, ये सात हाथ वाले धनुष थे, हाँ ये सात हाथ है, और अंगुल की अपेक्षा सात हाथ वाले, और अंगुल की अपेक्षा गणना करने पर 168 अंगुल प्रमाण है। एक हाथ के 24 अंगुल होते हैं, तो 24 को 7 168 हो जाता है। समझ में है ना, 24 गुना 7 करना। इसके दसवें प्रमाण उस अवगाहना का विष्कम्भ है, यानी जो हाइट है उसके दसवें भाग प्रमाण उसका विष्कम्भ होगा। फिर शंका, यहाँ पर उच्छेद के दसवें भाग प्रमाण विष्कम्भ क्यों लिया है, क्योंकि देव मनुष्य और नारकियों का उच्छेद 10, 9 और 8 ताल के प्रमाण से कहा गया है। ताल समझते, वित वित, यानी देव 10 ताल प्रमाण है, नारकी 9 ताल प्रमाण, ये 8 ताल प्रमाण। ताल यानी वो पाम ऑफ अ हैंड, वित जिसको हम कहें, कितने वित है, अपने अपने वित से हम नापेंगे तो कितने वित होता है इसको कहेंगे। इसलिए यहाँ पर उच्छेद के दसवें भाग प्रमाण विष्कम्भ लिया है। यानी जिसकी हाइट है उसका दसवां भाग प्रमाण ऐसे विड्थ हो गया। पुनः व्यास के आधे का वर्ग करके और उसे दूना करके अनंतर 168 उच्छेद के अंगुलों से गुणित करके 500 अंगुलों के घन से अपवर्तित करने पर, क्योंकि प्रमाण घन करना निकालना ये तो ऑर्डिनरी अंगुल है, उसके प्रमाण अंगुल करना है, प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग लब्ध आता है, वो निकालेंगे आगे देखेंगे हम। यानी एक एक देव का उसकी अवगाहना निकालनी है। क्या किया उसको, व्यास के आधे का वर्ग किया यानी त्रिज्या का वर्ग किया और उसको दूना करके उसके हाइट जो है उसको गुणा किया और उसके घन सॉरी प्रमाण अंगुल में निकालने के लिए ऑर्डिनरी 500 अंगुलों का एक प्रमाण अंगुल होता है और यहाँ घन में निकालना है, तो 500 के घन से भाग देना पड़ेगा उसको। तो कितना प्रमाण आता है, तो घनांगुल का प्रमाण घनांगुल का संख्यात्व भाग। इससे साधन समय दृष्टि आदि तीन गुण स्थानों की स्वस्थान स्वस्थान आदि राशियां, जो कि साधन समय दृष्टि आदि ओग राशि के उत्तरोत्तर संख्यात्व भाग प्रमाण है, उन्हें गुणित करने पर तीन गुण स्थान की स्वस्थान स्वस्थान आदि राशियों के क्षेत्र हो जाते हैं। इसी का विशेषांक करके बतला रहे। यहाँ स्वस्थान आदि पद परिणत पद यानी जो हमने बताया ना स्वस्थान विहारवत वेदना कषा ये सारे उसके पद हुए, उससे परिणत सासादन आदि तीन गुणस्थानवर्ती जीवों के अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहने की उपपत्ति बतलाई गई है। यानी वो असंख्यात गुणा क्षेत्र में रहते हैं ये बात उन्होंने बता दी। प्रकृत में सौधर्म ईशान देव राशि प्रधान है। इन स्वर्गों के एक देव की अवगाहना सात हाथ होती है, यानी वो 168 उच्छेद अंगुल होते हैं ऊंची। इसके दशमांश विष्कम्भ रूप होती है, उसका दशमांश है वो विष्कम्भ हुआ। तदनुसार एक देव की अवगाहना का घनफल इस प्रकार है। हाइट उसकी 168 अंगुल है। विष्कम्भ यानी उसकी चौड़ाई उसके दसवें भाग प्रमाण, 168 का दसवां भाग। तो विष्कम्भ को ऊपर बताया ना व्यास यानी विष्कम्भ, उसका आधा करके उसका वर्ग करना, तो 168 डिवाइडेड बाय 10 से विष्कम्भ है, उसको आधा करना, दो से भाग देना यानी आधे से गुणा करना है, ये बीच में भागा करके साइन है उसको गुणकार की करो, एक गुणा एक द्वितीयांश करके उसका वर्ग करना, फिर उसको दुगुना ऊपर हमने बोला उसको दुगुना करके 168 वाले विष्कम्भ से उसे सॉरी हाइट से उसको गुणा करना, एक देव की अवगाहना के उच्छेद घनांगुल आ जाएगी। ये घनांगुल में उसकी एरिया निकाली, कैसे निकाली, जो विष्कम्भ था उसका आधा करके उसका वर्ग कर दिया, उसको दुगुना कर दिया और हाइट से गुणा कर दिया, तो ये घन अंगुलों में उत्तर मिला। ये कैसे अंगुल है, तो ऑर्डिनरी अंगुल है जिसको उच्छेद अंगुल कहते हैं। अभी उसको हमको प्रमाण अंगुल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ही अंगुल होता तो उसको हम 500 से भाग देते, प्रतरांगुल को हम 500 के वर्ग से भाग देते, और घनांगुल है घनकार से अंगुल का अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल, इसलिए भाग किसके देंगे, 500 गुना 500 गुना 500 से भाग देंगे, यानी 500 के घन से भाग देंगे। तो इसके प्रमाण अंगुल हुए, देखो जो हमने ब्रैकेट में यहाँ लिखा था 168 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक द्वितीयांश किया था, तो 168 बटे 20 हुए, इसका वर्ग करो, फिर उसको दो गुना किया, फिर उसके 168 से गुना किया और नीचे 500 के घन से भाग दिया, तो ये संख्या इसी आती है ऊपर 9483264 ऊपर आ जाएगी, और नीचे 500 का घन है ना, और उसको ये 20 से भी गुणा किया है, तो इतनी नीचे संख्या आ गया। अब इज इक्वल टू उन्होंने उसको सॉल्व कर दिया, 1020 से उसको भाग 1024 से भाग दिया, तो ये संख्या यहाँ आ जाती है। यहाँ हमने कुछ करेक्शन किया है कि नीचे ऊपर 9261 है और नीचे 4882825 इतना आता है।
168 by 20 इसका स्क्वायर कर रहे
हैं। हाँ।
नीचे कितना आता है? 195 नहीं आता है।
नहीं, नीचे आता है 4882825।
4882821 25
यानी 4,88,28,125 488 28 125. पाँच सौ का घन ना, और उसको दो नहीं, पर फिर यहाँ दो 20 के वर्ग से गुणा करेंगे ना उसको, वो भी भागाकार है, 400 से उसको गुणा करना पड़ेगा, नहीं समझे? नाइन टू सिक्स वन बराबर है, देखो ये कैसे निकाल रहा, 500 का घन देखो ना, 500 इंटू 500 इंटू 500, तो ऊपर के जीरो 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 जीरो, छः तो जीरो आ गए ना, अभी 125 रह गए, 5 का घन 125 होता है, 125 को यहाँ 20 का वर्ग से गुणा करना, क्योंकि वो भी भागाकार है, 20 का वर्ग 400 आता है, तो ये दो जीरो भी यहाँ चले जाएंगे, 4 5 20, ये एक जीरो यह हो जाएगा, ये दो चाले, 12 4 48 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है ना वहाँ पर, 10 जीरो और ये 5 बराबर है, ये कैसे निकला?
500 का घन
इंटू 400, 420 का वर्ग, 20 का वर्ग से भी गुणा करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि वो भागहार में ही है, 168 बटे 20 था और उसका वर्ग किया तो 20 का वर्ग 400 आता है, तो भागहार में वो 400 इंटू 500 का घन, यानी आगे वाली संख्या कैसे निकली उतना ही देखना है हमको, और बाकी उसको 10 24 से भाग दिया तो ये संख्या आई, हमने 10 24 से भाग दिया था उसको, छोटी छोटी संख्या से भाग देते जाओ तो समझ में आ जाएगी बात, 4 4 से भाग देते जाओ तो भी 10 24 आया था लास्ट में, आगे बढ़ेंगे,
ये जो हमने 500
जीरो थे, हाँ
तो 500 गुना 500 गुना 500 गुना 400,
हाँ यानी वो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो जीरो यहाँ से हो गए, 4 5 20 और वो आगे वो तो हुए, फिर 12 4 48 और वो 2 50, उसका एक जीरो यहाँ और बढ़ गया, आगे बढ़े अभी, यह राशि प्रमाण घनांगुल के संख्यात्व भाग हुई, एक देव की अवगाहना के उत्सेक घनांगुल इतने आए और उसके प्रमाण घनांगुल इतने आए, अपूर्णांकों में आते हैं ना, इसे सौधर्म ईशान स्वर्गों की सासादन आदि तीन गुणस्थानवर्ती राशियों से गुणा करने पर एक देव की इतनी अवगाहना, तो उनकी संख्या जो है सासादन वालों की उसमें कितनी होगी, करने गुणस्थानों के तीनों गुणस्थानों के स्वस्थान आदि पदों के क्षेत्रों का प्रमाण आता है, जो तीनों लोकों के असंख्यात भाग तथा अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणा होता है, ये जो एरिया कैलकुलेट की वो इससे कितनी गुणा है तो हम निकाल सकते हैं, वो उन्होंने बता दिया, इतनी विशेषता है कि वेदना समुदात और कषाय समुदात का क्षेत्र लाने के लिए मूल अवगाहना को 9 से गुणित करना चाहिए, क्योंकि वेदना समुद्घात और कषाय में क्या होता है, अवगाहना ऐसे आड़ी और आगे पीछे बढ़ती, तीन तीन गुना, तीन गुना तीन नौ गुना हो जाता है, पूरा क्षेत्र पर नौ गुना हो जाता है। हाइट वाइज नहीं, ये तो मैक्सिमम इतना हो सकता है, क्योंकि वेदना और कषाय समुद्घात में उत्कृष्ट रूप से शरीर से तिगुना विस्तार पाया जाता है। तो ऐसा तीन और ऐसा तीन, तीन त्रिक नौ गुना हो जाता है। विहार व स्वस्थान और वैकृत समुद्घात का क्षेत्र लाने के लिए संख्यात घनांगुल गुणकार होते हैं। वैसे तो एक एक जीव क्या हुआ ना, प्रमाण घनांगुल का संख्यात अभाग थी, वहां उनकी संख्या से गुणा किया था, और यहाँ पर भी संख्यात गुणांगुल हो जाएंगे। अथवा वेदना समुद्घात आदि के द्वारा शरीर से तिगुने समुद्घात को करने वाले जीव स्वल्प हैं, बहुत कम है, तो उसके एवरेज मध्यम गुणकार लेना, नौ का आधा। इसलिए मध्यम गुणकार नौ के आधे रूप, यानी एवरेज नौ का आधा लेना, क्योंकि बहुत कम करने वाले और ये मैक्सिमम करने वाले, अर्थात साढ़े चार होता है। इन पूर्वोक्त गुणकारों से लोक के भाजित करने पर नहीं है, एदे ही लोगे भागे ही दे, इससे पूर्वोक्त गुणकार गुणित लोक से भाजित करने पर जो लब्ध आवे, यानी देखो गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि से, ये ऐसा हमें यानी हमने जो अवगाहना को गुणाकार किया था ना, उससे लोक को भाजित करने पर गुणकार गुणित अवगाहना,
उसके बदले में गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि से।
हाँ देखो हमने क्या किया हुआ ऐड, इन पूर्वोक्त गुणकारों से लोक के भाजित करने पर लिखा है ना, वहां हमने ऐसा लिखा है गुणकारों से के बदले इन पूर्वोक्त गुणकार गुणित अवगाहना गुणित राशि से। देखो देखो कौन सा गुणकार है, अभी नौ का आधा साढ़े चार, ये साढ़े चार से अवगाहना को गुणा किया, यानी साढ़े चार से अवगाहना मल्टीप्लाइड बाय साढ़े चार, एक जीव की अवगाहना इंटू साढ़े चार और मल्टीप्लाइड बाय उनकी राशि, ये जो पूरी संख्या आएगी उससे हमको लोक को भाग देंगे तो हमें लोक का कौन सा भाग है वो समझ में आ जाएगा। इससे लोक के भाजित करने पर जो लब्ध आवे उसे विरलित करके और उस विरलित राशि के प्रत्येक एक के प्रति लोक के समान खंड करके दे रूप दे देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति जो एक भाग प्राप्त होता है उतना इन गुणकारों से नहीं इन राशियों से रुद्ध क्षेत्र होता है, यानी इन राशि जो देवों की राशि बताई उन्होंने कितना भाग ऑक्यूपाई किया है उसका हमको क्षेत्र मिलता है उनसे रुद्ध है ना। हाँ ये गुणकारों के बदले यहाँ राशियों से करो, अभी जो गुणकारों से फिर शब्द आए ना ब्रह्मा, नीचे से चौचारण चार आठवीं लाइन में राइट साइड में, उतना इन गुणकारों से बदले इन राशियों से लिखना। पहले राशि देखो क्या किया, राशि से लोक को भाग दिया, उसी का विरलन किया उसी में लोक को दिया, यानी क्या करना है वो जो राशि राशि से लोक को भाग देना उतने भाग प्रमाण है वो रुद्ध ने उन्होंने व्यापा हुआ क्षेत्र रोका हुआ क्षेत्र रुद्ध ने रोका हुआ क्षेत्र तीन राजू बाहल्य से युक्त जगत प्रतर प्रमाण ऊर्ध्वलोक है। ये क्या कहना चाहते हैं, ऊर्ध्वलोक की हाइट कितनी है, सात राजू और दक्षिणोत्तर सात राजू, सात गुना सात उनचास प्रतर राजू, यानी जगत प्रतर है और एवरेज हमने कितनी देखी थिकनेस उसकी, ब्रह्मलोक के पास 5 है, ऊपर 1 है, 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3 हो जाएगी। ऊपर से नीचे तक 3 अगर हम पकड़ेंगे तो 7 × 7 × 3, 7 × 7 राजू जो होते हैं वो तो जगत प्रतर कहलाता है, और ये 3 राजू प्रमाण यही कह रहे हैं। ऊर्ध्वलोक के कितने हैं, 7 × 7 × 3 राजू, ये ऊर्ध्वलोक की एरिया है, यही कहते हैं। 3 राजू बाहल्य से युक्त जगत प्रतर प्रमाण ऊर्ध्वलोक है। 49 को 3 से गुणा करेंगे ना, कितना 147 आया था ना, इतने घन राजू ऊर्ध्वलोक की एरिया होगी, 147 घन राजू। ये 3 राजू कहाँ से आए समझ में, ये एवरेज निकाला हमने। यहाँ पर भी अपवर्तना पहले के समान करनी चाहिए, यानी ऊर्ध्वलोक का असंख्यात्वा भाग जो निकाला वो भी इसी पद्धति से निकालना है। अब नीचे का अधोलोक की एरिया निकालते हैं, 4 राजू मोटा, 4 राजू कैसे निकाला, नीचे 7 राजू बीच में 1 राजू, 7 और 1 = 8 होगा, और उसका आधा करना, क्योंकि दो जगह क्या है, एक बड़ी जगह एक छोटी जगह, एवरेज निकालने के लिए दोनों की एडिशन करते हैं, उसको 2 से भाग देते हैं, तो ऐसा 7 राजू ऐसा 7 राजू, और विड्थ उसकी एवरेज 4 राजू आ गए। तो 4 राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा अधोलोक है। यहाँ पर भी पूर्व के समान अपवर्तना करनी चाहिए। अपवर्तन यानी वो कितने भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं वो हमने निकाले थे, उसके असंख्यात्वा भाग हो जाता है। अब तिर्यक लोक की बात करेंगे, 1,00,000 योजन में 7 का भाग देने से, ये क्यों देना हमने पहले देखा था, जितना लब्ध आवे उतना मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा तिर्यक लोक है। तिर्यक लोक की एरिया कैसे, 7 राजू × 7 राजू × 1,00,000 का 7वां भाग, ऐसे देखते तो 1 राजू × 7 राजू × 1,00,000, उसके बदले हमें यहाँ 7 गुना किया और वहाँ 1,00,000 का 7वां भाग किया। हाँ वही वही, हाँ नहीं 168 तो उसका आया था, देवों का आया, 7वें भाग में तो उन्हें बहुत बड़ी संख्या निकाली। तो 1,00,000 योजन में 7 का भाग देने से जितना लब्ध आवे उतना मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा तिर्यक लोक है। यहाँ पर भी अपवर्तना पहले के समान करनी चाहिए, यानी जो हमने राशि की अवगाहना टोटल आ गई, एक जीव के एक देव की अवगाहना मल्टीप्लाइड बाई हमने उसको उनकी राशि से गुणा किया था, वो जो पूरा क्षेत्र आया उसे तिर्यक लोक के क्षेत्र को भाग देंगे तो कितने भाग प्रमाण आता है उसको हमको मिलेगा। यहाँ तिर्यक लोक का प्रमाण लाने पर विषकम्ब और आयाम से 1 राजू प्रमाण ही है, अतः घनलोक ऊर्ध्वलोक और अधोलोक इन 3 लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में तिर्यक लोक है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, परंतु उनका इस प्रकार का कथन घटित नहीं होता, क्योंकि इस कथन का पूर्व में स्वीकार किए गए कथन के साथ विरोध आता है। आगे यही पूछते, वो पहले स्वीकार गया किया कथन कौन सा है, उसका समाधान 4 राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा अधोलोक है, 3 राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा ऊर्ध्वलोक है, और 7 राजू मोटा और जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा सर्वलोक है, यही वह पूर्व स्वीकार किया गया कथन है। देखो यहाँ क्या पूछा था, कितने आचार्य कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, एक राजू ऐसा और एक राजू ऐसा उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? पहले वो गोलाकार मानते थे ना, बीच में भी गोल माना, नीचे भी गोल माना, और एक्चुअल कैसे दक्षिणोत्तर तो सात राज्य, एक राजू भाई सात राज्य, और उनका मानना क्या है, गोलाकार माना था बीच में, ये पहली चर्चा हो चुकी है। एक राजू भाई एक राजू उन्होंने माना था, तो वो कितने आचार्य मानते वो बात कथित नहीं होती है, यहाँ कथन कर रहे हैं। दोबारा वही बात बताइए, बयालीस पेज पर पढ़ रहे हैं। 45 लाख योजन विष्कम्भ रूप, अब ये मनुष्य लोक की बात है, और 1 लाख योजन ऊंचा मानुष लोक है। पुनः पूर्वोक्त गुणकार रूप क्षेत्र संबंधी विष्कम्भ और उच्छेद के अंगुल करके, अब यहाँ पढ़ा 14 नंबर की गाथा ऊपर पढ़ेंगे। व्यासं षोडश गुणितं षोडश सहितं त्रिरूप रूपैर्भक्तं व्यास त्रिगुणित सहितं सूक्ष्मादपि तद्भवेत् सूक्ष्मं। व्यास को 16 से गुणा करके पुनः 16 जोड़े, पुनः 3, 1 और 1 अर्थात 113 का भाग देवे, क्योंकि वो 3, 1, 1 ऐसे राइट से लेफ्ट को गिनना, 3, 1, 1 यानी 113। अंक कैसे गिनते हैं? उल्टे क्रम से। अक्षर कैसे पढ़ते हैं? लेफ्ट से राइट तक। अंक कैसे पढ़ते हैं? राइट से लेफ्ट तक। नहीं समझे? 84 कैसे पढ़ते हैं? 84 पढ़ा कैसे? पहले नाम किसका लिया? 84 पहले 4 का नाम लिया, फिर 80 का, 42 46, नाम हम पहले राइट साइड का अंक गिनते, समझ में आई बात? कोई भी संख्या लिखा, 96 पहले 6 का नाम लिया, फिर 9 का नंबर लिया। अंग्रेजी में ऐसा कहते 96 कहते, पर मराठी गुजराती हिंदी में कहते हैं 96। छन्नू 6 पहला लिया ना, नाम किसका लिया पहले? 6 का, फिर 9 का, ये पद्धति है। अंक ऐसे पढ़े जाते हैं क्योंकि एकम दहम शतम ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ 3, 1, 1 का अर्थ 113, और व्यास का तिगुना जोड़ देवे तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिधि का प्रमाण होता है। हमने तो व्यास से तिगुणी परिधि होती है अति स्थूल देखा, फिर दूसरे कथन देखा कि व्यास का भी वर्ग करो, उसको 10 से गुणा करो और सबका वर्गमूल निकालो। अब उससे भी और सूक्ष्म बताते हैं, यानी व्यास को 16 गुणा करे, पुनः 16 जोड़े और 113 का भाग देवे, और व्यास का तिगुणा जोड़ देवे। विशेषार्थ, यहाँ पर मंडलाकार क्षेत्र की परिधि का प्रमाण लाने की प्रक्रिया बतलाई गई है। स्थूल मान से तो परिधि का विस्तार व्यास से तिगुणा ले लिया जाता है, यथा वासो तिगुणो परिहि। ये तो बिल्कुल सूक्ष्म यानी स्थूल कथन है, जैसे हमें स्कूल में भी पढ़े थे ना, 22 सप्तमांश से गुणा करते थे, 22 सप्तमांश यानी 3 पूर्णांक 1 सप्तमांश से गुणा करते थे, केवल 3 गुणा करना है तो बहुत स्थूल बात है। इससे भी सूक्ष्म प्रमाण 10 का वर्गमूल बतलाया गया है, यानी व्यास को 10 के वर्गमूल से गुणा कर दो। यथा विखंभ वग्ग दह गुण करणी वट्टस्य परिरवो होदी, यानी विष्कम्भ ने वो डायमीटर व्यास उसको 10 से गुणा करो, विखंभ वग्ग को विष्कम्भ के वर्ग को 10 गुणा करके फिर उसका वर्गमूल निकालो। किंतु प्रस्तुत गाथा में इस सूक्ष्म प्रमाण से भी सूक्ष्मतर प्रमाण निकालने की प्रक्रिया बतलाई गई है, जो इस प्रकार है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर बताया कि एक राजु व्यास के वृत्त क्षेत्र की परिधि का प्रमाण इस प्रकार है कि वो एक राजु है, उसको 16 गुणा किया और फिर उसमें 16 मिला दिए और उसके 113 से भाग दिया, उसमें और क्या मिला? व्यास को तिगुना करके मिला दिया तो 371/113 हो गए। यानी 3.32/113 हो जाते। वो हम 3.17 निकालते थे ना, ये उससे भी सूक्ष्म बात है। उसी प्रकार हो गए 10 बजे, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। उसी प्रकार सात राजु वृत्त क्षेत्र की परिधि का प्रमाण इस प्रकार होगा। सात राजू क्यों लिया वृत्त हमने गोल, क्योंकि वो लाख का सातवां भाग वहां करेंगे। यह हमने सात राजू गुना सात राजू किया, उसका गोल निकालना भी। तो सात है ना यहाँ पर, वो एक राजू का निकाला था, यहाँ सात को निकाले थे। उसको 16 गुना करो, उसमें 16 मिलाओ, 113 का भाग दे दो, और सात राजू को 3 गुना करो, उसमें मिला दो, तो उसका उत्तर आता है 2501/113। और उसी को और खोलेंगे तो 22.15/113। ऊपर जो किया था ना उसको 7 से गुणा कर दो डायरेक्ट, तो भी वही आएगा। यानी ये जो उन्होंने सूत्र बताया है, इस सूत्र के नियमानुसार परिधि करके व्यास के चौथे भाग से गुणित करने पर, यानी परिधि निकालने का ये सूक्ष्म गणित है, और उसको व्यास के चौथे भाग से गुणित करने पर प्रत्रांगुल हो जाते हैं, यानी राउंड क्षेत्र का प्रमाण मिल जाता है। इन प्रत्रांगुलों को उत्सेद से गुणित करने पर संख्यात घनांगुल हो जाते हैं। यहाँ पर भी पहले के समान अपवर्तना करनी चाहिए, अर्थात इन घनांगुलों के प्रमाण घनांगुल करने के लिए 500 के घन का भाग देना चाहिए। ये एरिया उसके कितने भाग प्रमाण है तिर्यक लोक के, उसकी हमको निकालनी थी, उसकी ये विधि बताई। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक सदा देत हो लक्ष्मी।